सुमन की जिद आखिर में माधव को माननी ही पड़ी। उसने तो खाना पीना ही छोड़ दिया था। तब अनुपमा जी ने माधव को समझाया कि नई नई शादी हुई है, घूमने फिरने का मन होगा, चला जाए उसके साथ। सुमन की जिद का असर था कि आज वो लोग शिमला पहुंच गए थे। होटल पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो गई थी। यहाँ का मौसम भी कुछ खराब लग रहा था। कुछ घंटे पहले हुई बर्फबारी से आसपास के पेड़ पौधे, घर, सड़कें सब बर्फ की चादर ओढ़े बैठे थे, और अब भी बर्फबारी होने की पूरी पूरी संभावना थी। माधव और सुमन ने होटल में चेक इन किया। उनका सामान हनीमून सूट में पहुंचा दिया गया था, जो खास उनके लिए बुक हुआ था। सुमन तो बहुत खुश थी, पर माधव का मन अजीब सी कश्मकश में उलझा हुआ था। दोनों ने जैसे ही रूम में एंटर किया, जहां सुमन उस हसीन नज़ारे को देखकर खुशी से चहक उठी, वहीं माधव का मन घबराहट से भर गया। असल में उस हनीमून सूट को उनके लिए कुछ इस प्रकार से सजाया गया था, जैसे शादी की पहली रात दूल्हा दुल्हन के रूम को उनकी वेडिंग नाइट के लिए सजाया जाता है। समा बड़ा रोमांटिक बन गया था। हवाओं में दिल को मदहोश करने वाली खुशबू बिखरी थी। सब कुछ बेहद खूबसूरत था, और उस खूबसूरती में चार चांद लग गए जब बाहर स्नोफॉल शुरू हो गई। बालकनी के ग्लास वॉल को सरकाते हुए सुमन खुली बालकनी में चली आई और अपनी दोनों बाहों को फैलाए बर्फ को अपनी हथेलियों से सहलाने लगी। अरे, तुम वहां खड़े होकर क्या कर रहे हो? इधर आओ ना मेरे पास, देखो तो कितना मजा आ रहा है। मुझे तो स्नोफॉल बहुत पसंद है, मैंने तो दो तीन बार देखा हुआ है, पर तुम तो शायद पहली बार ही ऐसी जगह आए होगे। आओ देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। सुमन के बार बार बुलाने पर माधव भी उस ओर चला आया। सुमन बेफिक्री ही बर्फ की बारिश में झूम रही थी और माधव बस खामोशी से उसे तक रहा था। दिल अजीब कश्मकश में उलझा था और वो मन ही मन खुद को समझा रहा था। बर्फ में झूमते हुए सुमन की नज़र जब शांत खड़े माधव पर पड़ी, तो उसने उसके बाँह पकड़कर उसे भी अपने साथ खींच लिया। कुछ देर उसके आसपास भंवरे जैसे मंडराते हुए झूमती रही, फिर माधव के कोट के कॉलर को अपनी मुट्ठियों में भींचते हुए झटके से उसे अपनी ओर खींच लिया। माधव अनजान तौर पर उसके इतने करीब चला आया कि दोनों की नाक एक दूसरे को छूने लगी और सांसें एक दूसरे की सांसों से उलझ गईं। माधव कुछ हड़बड़ा गया, पर जब नज़र सुमन की झुकी पलकों और अपने होठों की ओर बढ़ते उसके सुर्ख लबों पर पड़ी, तो उसने अपनी आँखें बंद कर दीं। देखते ही देखते दोनों के लब एक दूसरे से टकरा गए। सुमन के कोमल लबों के स्पर्श से माधव का पूरा वजूद कांप उठा और दिल अजीब सी बेचैनी उसे भर गया। उसने अपने जज्बातों को दिल की गहराइयों में कहीं दफना दिया और मन को दृढ़ कर लिया। सुमन ने उसकी बाहों को पकड़कर अपने कमर के इर्द गिर्द लपेट दिया और अपनी कोमल पतली बाजुओं को उसकी गर्दन पर लपेटते हुए उसके और भी करीब हो गई। धीरे धीरे दोनों के लब एक दूसरे के लबों को सहलाने लगे, उनकी सांसें एक दूसरे में घुलने लगीं। सुमन इसमें काफ़ी माहिर खिलाड़ी नज़र आ रही थी। जैसे जैसे उनकी किस और डीप और इंटेंस होती जा रही थी, माधव की पकड़ उसके कमर पर कसती जा रही थी, जिससे सुमन ज़्यादा एक्साइटेड होकर उसके होंठों के साथ खेलने लगती। कुछ वक्त यूं ही गुजर गया था। दोनों इस वक्त रूम में थे। माधव ने अपने अरमानों का गला घोंट दिया। अपने दिल के विरुद्ध जाकर सुमन के साथ उस रिश्ते में आगे बढ़ गया था। उसकी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश कर रहा था, और उनके रिश्ते में आगे बढ़ाने में माधव से ज़्यादा हाथ तो सुमन का था। वो माधव से ज़्यादा एक्साइटेड और बेसब्र नज़र आई थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि इन सब का काफ़ी एक्सपीरियंस था उसे, जबकि उसके सामने माधव बिल्कुल अनाड़ी था। आधी रात गुजर गई थी, पर सुमन का मन अब भी माधव से नहीं भरा था, जबकि माधव अब खुद से ही लड़ते लड़ते थक चुका था। सुमन की करीबी उसका दम घोंट रही थी और वो अब जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहता था। सुमन जब अपनी हसरतों को पूरा करके माधव से पूरी तरह संतुष्ट होकर गहरी नींद में सो गई, तो माधव ने उसे अपने ऊपर से हटाकर साइड में लिटाया। उसे ब्लैंकेट से ठीक से कवर करने के बाद अपने शरीर को ओवरकोट से ढकते हुए बेड से नीचे उतर गया। कमरे की अस्त व्यस्त हालत देखकर उसने अपनी आंखों को भींच लिया। सब याद आते ही उसकी आंखें भीग गईं और लबों पर दर्द भरी मुस्कान उभर आई। जो हक मेरे दिल ने सिर्फ आपको दिया था, आज मैंने खुद पर वो सभी हक सुमन को देकर इन्हें अपनी वाइफ के रूप में अपना लिया है। आपसे जुड़े एहसासों के साथ कोई छल नहीं किया है, पर सुमन को खुद से और दूर रखना मेरे बस में नहीं था। आप शायद मेरे दिल में हमेशा रहेंगी, पर अब ये जिंदगी मैंने सुमन के नाम कर दी है। चेहरे पर दर्द, बेबसी और तड़प जैसे कई भाव उभरे। पहले उसने फर्श पर बिखरे अपने और सुमन के कपड़े उठाए, जो सुमन ने एक्साइटमेंट में यूं ही छोड़ दिए थे। अपने कपड़े पहने, कमरे को व्यवस्थित किया, फिर खुद बालकनी में चला आया। बर्फबारी थम चुकी थी, पर सर्द हवाएं जिसमें सिहरन पैदा करने को आतुर थीं। अंदर अजीब सी घुटन का एहसास हो रहा था उसे, और यहां आकर कुछ बेहतर महसूस कर रहा था वो। अगली सुबह करीब 7 बजे सुमन की आंखें हल्की सी खुली। उसने आधी नींद में ही माधव को तलाशा, पर जब उसे बेड पर अपने अकेले होने का एहसास हुआ तो अपनी नींद से बोझिल पलकें उठाकर उसने पूरे कमरे में निगाहें घुमाई, पर माधव उसे कहीं नजर नहीं आया। पर बेड के साइड में रखे अपने कपड़े देखते ही उसके लबों पर प्यारी सी मुस्कान बिखर गई। माधव अब भी बालकनी में खड़ा मनमोहक शिमला शहर को देख रहा था, जो बर्फ की चादर ओढ़े अपनी अद्भुत खूबसूरती का प्रदर्शन कर रही थी। अचानक ही किसी की हथेली के अपने पेट पर फिसलने का एहसास हुआ तो ध्यान इन खूबसूरत नजारों से हटा। तब तक सुमन उसे पीछे से अपनी बाहों में भर चुकी थी और अपने चेहरे को उसकी पीठ से सटा लिया था। गुड मॉर्निंग, उसकी मीठी सी खनकती आवाज उसकी खुशी जाहिर कर रही थी। माधव के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव उभरे। उसने होठों को गोल करते हुए गहरी सांस छोड़ी और फीकी मुस्कान लबों पर बिखेरते हुए जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। कल की रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। तुम्हारे साथ बहुत मजा आया मुझे। तुम्हें भी अच्छा लगा ना मेरे साथ? एक बार फिर सुमन ने चहकते हुए अपनी खुशी जाहिर की और माधव की मुस्कान में दर्द खुल गया, जिसे छुपाने में वो एक बार फिर कामयाब रहा। आपके साथ बिताया हर पल हमारे लिए खास है। माधव का जवाब सुनकर सुमन की मुस्कान गहरी गई। उसकी पीठ को छोड़कर वो अब उसके सीने से लगाई और अपनी बाहों को उसके पीठ पर कस दिया। माधव ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया, क्योंकि यही तो चाहती थी वो। कुछ देर बाद दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया, फिर शिमला की सैर पर निकल गए। माधव और सुमन अपने हनीमून से वापस आ चुके थे। उन दिनों माधव ने सब कुछ सुमन की पसंद के अनुसार किया था, उसे खुश रखने की पूरी कोशिश की थी। सुमन और उसके बीच नजदीकियां काफी बढ़ चुकी थीं और हाल कुछ यूं था कि हनीमून से लौटने के बाद भी सुमन के सर से खुमारी नहीं उतरी थी। लौटकर जब माधव ने अपना कमरा देखा तो उसे पहचान नहीं सका। रूम को पूरी तरह से बदल दिया गया था। हर वो चीज जिससे माधव की कई यादें जुड़ी थीं दूसरे रूम में पहुंच गई थीं और अब वहां सब कुछ सुमन की पसंद का था। खैर, रूम लग बड़ा ही खूबसूरत रहा था और सुमन की खुशी देखकर माधव ने उसे कुछ कहा भी नहीं था। देखते ही देखते माधव और सुमन की शादी को 2 महीने हो गए थे। सुमन के बहुत जिद करने पर माधव ने अपनी नाइट में होटल वाली जॉब छोड़ दी थी, जिससे घर का बजट हिल गया था। मैकेनिक वाली जॉब भी छोड़ने का फैसला कर चुका था और कई होटल और रेस्टोरेंट में अप्लाई कर चुका था। जैसे तैसे वो अपनी गृहस्थी की गाड़ी को घसीट रहा था।
रात का वक्त था। सुमन माधव के बदन से नागिन जैसे लिपटी हुई थी और उसके सीने पर उंगलियां चला रही थी। माधव आंखें मूंदे खामोश सा लेटा था। इस बीते 1 महीने में उसने अपने दिल को समझा लिया था और अब सुमन की नजदीकियां उसको इतना बेचैन नहीं किया करती थी, बर्दाश्त कर लेता था वो। माधव, मेरी ऑफिस की छुट्टियां खत्म हो गई हैं, कल से मुझे वापस ऑफिस ज्वाइन करना है। अच्छी बात है, कर लीजिए वापस ऑफिस ज्वाइन, हमेशा की तरह माधव ने सहजता से जवाब दिया। पल भर ठहरते हुए उसने आगे कहना शुरू किया, माधव, यहां से मेरा ऑफिस काफी दूर है, जाने आने में बहुत वक्त बर्बाद हो जाएगा और मेरी कार भी घर पर है। यहां तो पार्किंग की ठीक सी जगह भी नहीं, मैं अपनी कार कहाँ खड़ी करूंगी और कैसे ऑफिस जाना आना करूंगी, बहुत परेशानी होगी मुझे। तो मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना हम मेरे फ्लैट में शिफ्ट हो जाएं, वहां पार्किंग भी है, ऑफिस के पास भी है, वेल फर्निश्ड भी है, वहां हमें किसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा और हम दोनों आराम से वहां रहेंगे। सुमन बहुत ही सॉफ्टली सब कह रही थी, शायद माधव को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश कर रही थी। पर जैसे जैसे वो बोलती जा रही थी, माधव के चेहरे के भाव भी बदलते जा रहे थे। सुमन ने जैसे ही बात खत्म की, माधव ने अपने सीने पर फिसलती उसकी हथेली को थाम लिया और उसे खुद से दूर करते हुए शांत पर गंभीर स्वर में अपना फैसला सुना दिया। सुमन, आज कह दिया, दोबारा ये ख्याल भी अपने मन में मत लाइएगा कि मैं अपने परिवार को यहाँ अकेला छोड़कर चला जाऊँगा। मेरी माँ और मेरी बहनें मेरी जिम्मेदारी हैं, मेरा परिवार है और आपसे शादी करके मैंने आपको अपने इसी परिवार का हिस्सा बनाया है। आपके लिए मैं अपने इतने सारे रिश्ते नहीं छोड़ सकता, जिनसे मेरी पहचान है उनसे मुंह नहीं मोड़ सकता, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से पीछे नहीं हट सकता। मैं यहीं रहूँगा अपनी फैमिली के साथ और आपको भी यहीं रहना होगा। आपके लिए मैंने अपने कमरे में और घर में इतने बदलाव करवा लिए हैं, कोई कमी है तो बताइए, वो भी हो जाएगा, पर रहना आपको यहीं होगा मेरे साथ। सुमन, जो अब तक उस पर प्यार की बारिश कर रही थी, अपनी मीठी मीठी बातों में उसे फंसा रही थी, एकाएक गुस्से से भड़क उठी। मैं यहाँ तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं रह सकती, मैंने शादी तुमसे की थी ताकि तुम्हारे साथ अपनी अलग दुनिया बसाऊं और खुश रहूं, मुझे कभी से तुम्हारी इस मिडिल क्लास मेंटालिटी वाली घटिया फैमिली का हिस्सा नहीं बनना था। मैं अब और एडजस्ट नहीं कर सकती, ये सास ननद के रिश्ते संभालना मेरे बस की बात ही नहीं है। बंदिशों में नहीं रही मैं कभी, अपने हिसाब से खुलकर जिंदगी जीती आई हूँ और यहाँ इस घर में दम घुटता है मेरा,
तुम्हारी माँ और बहनों की बेवजह की दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे, मैं यहाँ नहीं रह सकती। और इतनी सी बात पर इतना क्या नाराज़ हो रहे हो तुम? क्या मैं तुम्हारे लिए अपनी फैमिली, अपना घर, अपने फ्रेंड्स, अपनी लाइफस्टाइल सब छोड़कर यहाँ तुम्हारे इस छोटे से घर में नहीं रह रही? जब मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर सकती हूँ तो क्या तुम मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? मैं कौन सा कह रही हूँ कि तुम अपनी फैमिली से सभी रिश्ते ख़त्म कर लो? जैसे मैं अपनी फैमिली से मिलने जाती रहती हूँ, तुम भी यहाँ आते जाते रहना, निभाते रहना बेटे और भाई का फ़र्ज़। मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें, पर जब तक तुम यहाँ हो कभी पूरी तरह से मेरे हस्बैंड नहीं बन सकोगे और ना ही मैं अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जी सकूंगी। इसलिए यहाँ से तुम्हें जाकर रहूंगी और तुम भी मेरे साथ ही चलोगे। अजीब ही ज़िद थी उसकी। माधव की बात तो वो सुनने तक को तैयार नहीं थी। उसने अपना फ़ैसला सुनाया और मुँह फेर कर लेट गई। माथे पर चिंता की लकीरें खींचे माधव परेशान सा उसे देखता ही रह गया। टू बी कंटिन्यूड।